ओम शांति, ओम शांति। प्यारे शिव बाबा, इस संगम युग पर आकर हम बच्चों की झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, जिसका ही यादगार भक्ति मार्ग में है। भक्त लोग परमात्मा को पुकारते हैं और क्या कहते हैं, बम बम भोले भर दे झोली। तो भोलानाथ बाबा आकर हमारी झोली भरते हैं, लेकिन भक्त लोग कौन सी, किस, वो भक्त लोग क्या समझते हैं, किससे झोली भरते हैं भगवान, क्या डालते हैं उस झोली में। वो समझते कि धन दौलत संपत्ति वैभव वो भगवान झोली में भरेंगे, इसलिए कहते बम बम भोले भर दे झोली। लेकिन बाबा कोई वो धन दौलत वैभव उससे झोली नहीं भरते हैं, वो तो हमारे कर्म अनुसार ही मिलता है, लेकिन किससे झोली भरते हैं, ज्ञान रत्नों से। तो ज्ञान रत्नों से इस समय बाबा झोली भरते हैं, और यही रत्न फिर भविष्य में सच्चे रत्न बन जाते हैं, और हम बच्चे विश्व के मालिक बन जाते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया, इस समय ज्ञान रत्न भरना और ये भविष्य में सच्चे रत्न बन जाना और हम विश्व का मालिक बन जाना, बाबा कहते ये बड़ा गुप्त है, ये गुप्त है, दुनिया नहीं जानती है। अगर इनको किसी को कहो कि भगवान हमको हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते, कहते क्या दिखाई तो को देता नहीं है। लेकिन ये बुद्धि रूपी झोली है जिसमें बाबा ज्ञान रत्न भरते हैं और गुप्त रूप में भरते हैं, और गुप्त रूप में है इसका यादगार भक्ति मार्ग में गुप्त दान है। भक्ति मार्ग में दान करते हैं तो कहते गुप्त दान महाकल्याण। दान इतना गुप्त होना चाहिए जो दायां हाथ दान दे तो बाएं को भी पता न चले, इतना गुप्त हो। बताना नहीं होता है, वर्णन नहीं करना होता, मैंने इतना किया इतना किया, इसलिए गुप्त दान का महत्व है। तो गुप्त दान क्यों, क्योंकि इस समय बाबा जो हमें देते हैं वो गुप्त रूप में देते हैं, और विश्व के मालिक बन जाते कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये ज्ञान रत्नों से झोली भरकर हम विश्व के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई हथियार पवार कोई बारूद तो कुछ है ही नहीं। दुनिया में जो देशों पर आक्रमण करते हैं तो कितना बारूद उसमें चाहिए, कितना झगड़ा होता है, कितनी लड़ाइयां होती है, तब जाकर के दो थोड़ा टुकड़ा जमीन का मिल जाता है। और यहाँ बाबा कहते हैं बिना लड़ाई झगड़े बिना किसी बारूद बिना किसी हथियार पवार बिना कोई रक्त बहाए तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो, पर कैसे, गुप्त। तो आज बाबा ने उसका राज खोला है कैसे ये सब गुप्त बाबा करते हैं जो दुनिया नहीं समझती है। उनको तो समझ में नहीं आता ये ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही है, क्या सेवा कर रही है। हालांकि अब ये धीरे धीरे समझने लगे हैं, लेकिन इतने ज्ञान रत्न उनको मिल रहे हैं ये तो अभी भी इतनी समझ थोड़ी है। वो समझते हैं वो तो सब जगह मिलते हैं और संस्थाएं भी ऐसे ही देती है, पर ये इतना महान कार्य भगवान का चल रहा है बाबा कहते अभी तक नहीं समझते, पर समझेंगे जरूर। आंखें खुल तो रही है, परंतु बाबा कहते भगवान आया है ये समझे तब बाबा कहते बाबा की प्रत्यक्षता होगी, और वो भी होनी है। सब ड्रामा में नींद है, लेकिन समय अनुसार होना है। तो बाबा की आज की मुरली इसी पर है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 10/7/2026 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। क्यों आए हैं बाबा? हम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न हमारे हाथ में क्या है, कितनी करोड़ों की मिल्कियत है, ये कितने ज्ञान रत्न हमारे हाथ में है। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों के हैं, है ना। इतनी वैल्यू हमको बाबा की मुरली से, बस बाबा मिला, बाबा की मुरली मिली, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? भक्ति मार्ग में तो बहुत महत्व है ना गुप्त दान का। गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती, फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से, फिर जो तुम्हें मिलता है फिर तुम औरों को ज्ञान दान करते हो, तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। हम भी वो रत्न दान करते हैं तो वो दान से राजाई ले लेते हैं। ये भी गुप्त है ना। क्यों गुप्त है? क्योंकि न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, और न ही कोई खर्चा। ज्ञान रत्न बांटने में कोई खर्चा भी नहीं है, इसलिए हम, और ये ज्ञान रत्नों की वैल्यू इतनी है, हम पैसे से हम भेंट कर भी नहीं सकते। इसलिए हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई टिकट विकेट नहीं होती है, फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन कई जगह पास रखनी पड़ती है, कई जगह इनविटेशन लेटर दिखाना पड़ता है, लेकिन टिकट नहीं है। क्योंकि ज्ञान रत्नों का महत्व इतना है कि किसी धन से या पैसे से भेंट नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने ये साफ मना किया, कोई भी तुम प्रोग्राम करो उसमें कोई टिकट हो और वो टिकट लेकर, पैसे देकर, टिकट खरीद कर आए प्रोग्राम में, हमारे किसी भी कार्यक्रम में ऐसे नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं, ये भी गुप्त है ना, न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न ही कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। इसलिए तो लोग पूछते हैं, आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है? दुनिया में तो सब खुला है ना, टिकट भी बेचते हैं और दान पात्र होते हैं इतने, क्या क्या होता है। फिर बाबा कहते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दिखाई नहीं देता है, ये कहाँ से खर्चा आता है, पूछते रहते हैं। इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति, आज बाबा ने इसी से शुरू किया, डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं और एक ब्रह्मा दादा कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म है शांति, शिव बाबा का भी और ब्रह्मा बाबा की आत्मा का भी, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी दुनिया में पाठ बजाने। है निराकारी दुनिया में रहने वाले, फिर वहां से साकारी दुनिया में पार्ट बजाने आई है। क्यों पार्ट बजाने आए हैं? क्यों आए हैं पार्ट बजाने? क्योंकि ये ड्रामा की स्टेज है, तो ड्रामा की स्टेज पर आएंगे तभी तो पार्ट बजाएंगे ना। और हर आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है, तो उसको ड्रामा की स्टेज पर आना ही पड़ता है पार्ट बजाने, क्योंकि ये ड्रामा है ना। तो बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक तीनों काल तीनों लोक, ऊपर से लेकर नीचे तक ये ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊंच से ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे, तो इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो, बाबा ने स्कूल को नया नाम दिया है खुदाई स्कूल। खुदाई स्कूल है ये, जहाँ खुदा खुद आकर के हमें पढ़ाते हैं। खुदाई स्कूल में ये कहाँ पढ़ते हो? खुदाई स्कूल में। भगवानोवाच, अब भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान तो है नहीं। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सब का एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं, तो कहा जाता है कैसे सृष्टि रचते हैं? ब्रह्मा द्वारा। तो कहा जाता है प्रजा पिता ब्रह्मा, वो भी सभी का एक ही है, सबका एक ही है। धर्म पिताओं का भी वो पिता है ना, प्रजा पिता ब्रह्मा। सब धर्मों की आत्माओं का भी वो पिता है, प्रजा पिता ब्रह्मा। शिव को प्रजा पिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजा पिता ब्रह्मा, गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है, शिव बाबा को किस रूप में बुलाते हैं? हे पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उसका अंत होता है, उस पतित दुनिया का भी जब अंत होने का समय होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बहुत कुछ जान गए हैं, तो आज के बाबा कहते हैं अब तुम जान गए हो कि बाप आते भी एक ही बार है, सारे कल्प में केवल एक ही बार आते हैं, और कब आते ही नहीं है, और कब आते ही नहीं है, केवल एक ही बार आते, वो भी इस समय, कब? जब सब पतित हो गए हैं। और कब आते ही नहीं है। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबके एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। अब वो होता है छोटा हद का पार्ट ड्रामा में, जो और एक्टर्स भी होते हैं, हरे का जो भी पार्ट होगा छोटा पार्ट है। एक घंटे का ड्रामा होता है, या दो, चलो 2-3 घंटे का भी हो तो भी हद का है। वो होता है छोटा हद का पार्ट, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, पहले तो बहुत देखते होंगे ना, फिर बाबा के बन गए तो फिर सब छूट गया। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। वो जो फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, वो सब बुद्धि में याद हो जाता है। वो लिख भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं, याद भी कर सकते हो। छोटी सी बात है, छोटा सा एक ड्रामा होता है। ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, अब क्या राज बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वो अगले जन्म यानी पिछले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। तो आप पर कलयुग के जो भी राजाएं बनते हैं उन्होंने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया, उसके आधार से वो राजा बनते हैं, या एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि वो दूसरे जन्म में भी बनेंगे, दूसरे जन्म में उनको फिर दान पुण्य करना पड़ेगा, फिर तब वो राजा के घर में जन्म लेंगे। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग के राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है, 21 जन्म चलती है। हाँ, ऐसी राजाई, ऐसे नहीं एक ही जन्म हुआ खत्म, नहीं, तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वो जास्ती दान पुण्य करते हैं। अब ये भी एक राज है, जो देवताओं की आत्माएं है, चाहे वो द्वापर में भी आई तो भी धनवान तो बहुत होगी ना, तो वो भी जास्ती दान पुण्य करते हैं तब उनको एक जन्म की राजाई द्वापर में मिलती है। क्योंकि और जो आत्माएं आती है वो थोड़ी कोई इतनी धनवान होगी, पर सच्ची प्रेता की जो महाराजा महारानी की आत्माएं होंगे या जो भी आत्माएं होंगी वो द्वापर में भी बहुत धनवान होंगे, फिर वही तो फिर दान करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वो जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वो भी राजाई में आ जाते हैं। सत्युग त्रेता के राजाएं वो द्वापर युग में भी राजाई में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत धन होता है तो वो दान पुण्य करते हैं। परंतु अंतर क्या हो जाता है, अंतर ये कि वो परंतु वो फिर हो जाते विकारी राजाएं, वो निर्विकारी राजाएं तो नहीं हुए ना, विकारी राजाएं। अब तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो, फिर भी सुख तो बहुत रहता है। बाबा कहते 3/4 सुख है, द्वापर में भी बहुत सुख होगा, दुख तो सिर्फ अभी है, अंत में होता है ना। कईयों की आयु हम देखते हैं कि पूरी आयु तो कभी एक गोली भी नहीं खाई, एक दवाई भी जरा नहीं ली, परंतु जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तब फिर थोड़ा खानी पड़ती है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये दर्द वो दर्द, परंतु सारा जीवन तो बहुत ही अच्छा रहा। तो बाबा कहते ये भी अंत में थोड़ा दुख है, दुख तो सिर्फ अभी होता है, अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। दुनिया की भेंट में बहुत सुखी है हम, ऐसे नहीं कि धन है ज्यादा इसलिए सुखी है, क्योंकि ज्ञान है इसलिए वो दुख महसूस नहीं होता है। दुनिया में ज्ञान नहीं है तो दुख थोड़ा भी होगा वो भी ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। अब बाबा ने हमें ज्ञान दिया है तो दुख महसूस होता है, जो समझते हमको दुख महसूस होता है वो हाथ उठाओ भाई, कोई नहीं होगा। हाँ, कोई भी नहीं, क्योंकि ज्ञान मिल गया ना तो दुख कोई महसूस नहीं होता है। बाबा कहते हैं दुख तो सिर्फ अभी है, अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है, ये तो बाद में होता है। जब लाखों के अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। हाँ, द्वापर युग में थोड़ा थोड़ा होने लगता है, लाखों की तादाद में हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता में भी बहुत सुख है, जब तमो प्रधान शुरू होता है तो भी थोड़ा दुख होता है, थोड़ा। अब तो है ही तमो प्रधान, बाप समझाते हैं। हाँ, बाप क्या समझाते हैं कि ये है ही तमो प्रधान दुनिया, तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता। हाँ, ये अटल सत्य है कि इस ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं हे भगवान, तुमने ऐसा खेल रचाई क्यों, ऐसा ही हमको दुनिया में भेजा ही क्यों, ये दुनिया ही क्यों बनाई। यहाँ तक भगवान को कहते हैं कि ये भगवान तुमने ऐसा खेल रचाई क्यों, अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती। वो ऐसे कहते भगवान को, तुमने रचाई क्यों, रचा नहीं होता तो दुनिया ही नहीं होती। लेकिन बाबा सत्य क्या बताते हैं, हम इस प्रकार से बताते, ऐसा कभी समय नहीं था जब समय नहीं था, ऐसा कभी समय नहीं था जब समय नहीं था, समय सदा है ही है। ऐसा कभी समय नहीं था जब आत्मा नहीं थी, ऐसा कभी समय नहीं था जब परमात्मा नहीं थे, ऐसा कभी समय नहीं था जब प्रकृति नहीं थी, और ऐसा समय कभी नहीं था जब वो समय परिवर्तन नहीं होता था। तो मैनेजमेंट में ये कहते हैं परिवर्तन ये अविनाशी है, ऐसा कभी नहीं होता कि परिवर्तन न हो। जो कल हुआ वो आज नहीं होगा, जो आज होगा वो फिर कल आने वाला वो उस समय नहीं होगा। परिवर्तन 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 भी अविनाशी है। तो कितनी चीजें अविनाशी हो गई, तो प्रश्न थोड़ी उठ सकता है क्यों बनाया, क्या बनाया, बनाए नहीं है अविनाशी। तो बाबा कहते हैं अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, ऐसे कहते कुछ नहीं होता। अब रचयिता और रचना तो है ना, वो तो अनादि अविनाशी है, तो ये प्रश्न कैसे उठ सकता है कि ये नहीं होता। रचयिता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज है, पूरी उसकी रचना है अभी बाकी थोड़े रोज है। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे ना। बहुत उत्सुक होते हैं बाबा के बच्चे, कैसे परिवर्तन होगा, कैसे विनाश होगा, कैसे सतयुग आएगा। हाँ, तो बाबा कहते तुम देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वो अभी थोड़ी दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। अभी मत उत्सुकता दिखाओ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जब होगा तब उनको साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वो भी कल्प पहले माफी की होगा, कोई नई बात थोड़ी होगी, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था वही होगा। ये तो देखते ही हो, तैयारियां तो हो रही है, विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। वो ड्रामा में पहले से ही मूंद है, सबकी तैयारी हो रही है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। ये है मुख्य काम हम बच्चों का, जो हमारी आत्मा तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनाना है। तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है, ये तुम अभी समझते हो। बाप तो गुप्त आते हैं, गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, बाप भी गुप्त और उनका तरीका देने का वो भी गुप्त, कोई नहीं जानते। ये सब कहाँ जाते हैं, लोग पूछते हैं आप लोग कहाँ जाते हो, सुबह सुबह उठ करके जल्दी जल्दी तैयार होकर भागते हो सेंटर पर, ये सब कहाँ जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है, तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं, सचमुच और कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ इतना सुबह 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 निकल आते हैं बाबा के पास मुरली सुनने या क्लास में आते हैं। और कहीं नहीं होता है, बाद में होता है सब जगह, पर बाबा के यहाँ सब कुछ और वो भी रोज बिना नागा। हा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं, न कोई लड़ाई न कोई बारूद न कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारामारी चल पड़ती है, तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। इसलिए कहते हैं ना भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, भर दो झोली शिव भोला भंडारी, भर दो झोली। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तुम कितने रत्न देते हो, अब लेते कितने हो फिर देते कितने हो, हाँ तुम कितने रत्न देते हो फिर तुम कितने दानी बनते हो। ज्ञान रत्न सबको बांटते हो, बाबा कहते कोई भी तुम्हारे पास आए हाथ खाली न जाए। वैसे भी भारत की संस्कृति है ये, अतिथि देवो भव, जो भी आए अतिथि आए, चलो और कुछ नहीं हो आपके पास पानी तो दे सकते हो, हाँ ऐसे नहीं उसको भेजो। अब वो तो स्थूल बातें हैं, लेकिन बाबा कहते साथ साथ ज्ञान रत्न भी बांटो, वो तो दो ही लेकिन ज्ञान रत्न भी बांटो, उससे भी वंचित न हो जाए, ऐसे नहीं आए और पानी पिलाया और गया। तो बाबा कहते हैं तुम कितने दानी बनते हो, पर वो भी गुप्त है। अब उनको ज्ञान सुनाते हो तो ये ज्ञान रत्न उनको देते हो, वो भी गुप्त है, वो क्या समझे कहाँ समझेगा कि भाई ये रत्न दे रहे हमें, वो भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार बुझाएं आदि दे दी है, वास्तव में ये कुछ भी है नहीं, इतने हथियार इतनी भुजाएं, हाँ बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं, कलयुग में भी कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं, हाँ देवी देवताओं को विनाश के लिए बॉम्ब्स है। हाँ अभी तो हथियारों की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बने हैं जो हथियार की जरूरत ही नहीं है। पहले तीर कमान से लड़ते थे, फिर चलो तलवारों से लड़ना शुरू किया, फिर छोटी छोटी बंदूकों से लड़ने लगे, अभी तो उसकी जरूरत ही नहीं है, बस एक बॉम्ब गिराया खत्म। तो बाबा कहते हैं विनाश के लिए बॉम्ब्स है तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे, और वो भी ऐसे नहीं कि वहां जाकर के गिराना है, एक जगह से ही बस बटन दबाना है वो उस टारगेट तक पहुंच जाएगा। तो अभी ये सब बाण तलवार आदि की क्या दरकार है। तुम कहते हो ज्ञान खड़ग है, ज्ञान तलवार है, तो उन्होंने हथियार समझ लिए, है ना, मूल्यों में आता है ज्ञान खड़ग ज्ञान तलवार, खड़ग भी एक तलवार के रूप ही का ही रूप होता है, तो ज्ञान तलवार तो उन्होंने फिर हथियार समझ लिए हैं, है कुछ भी नहीं, कोई हथियार नहीं है। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। खड़ग मैं खड़गपुर गई थी तो मैंने वहां पूछा एक खड़ग का अर्थ क्या होता है, तो बोला खड़ग भी एक तलवार है, तो वो खड़गपुर कहते हैं, तो वहां पर गायन है खड़गपुर के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़गपुर, ख ख ख, हाँ ये भी टंग ट्विस्टर कहते हैं जीभ को, तो वही ख ख। तो वहां पर बहुत बड़ा खड़गपुर में इतनी बड़ी वो जैसे मूर्तियां दिखाते ना वैसे इतनी बड़ी वो तलवार दिखाई है, वो ये कहते हैं ये खड़गपुर इसी नाम से है, इतनी बड़ी तलवार है वो। तो बाबा कहते हैं हाँ तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते ही हैं नर से नारायण बनने, उनको सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं के ही होते हैं। दैवी गुण किसके होंगे? देवी देवताओं के ही होंगे। फिर कलाएं कम होती जाती है, जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, बहुत होती है संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी, फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक माना लकीर बच जाती है। सारा गुण नहीं होता, भले अमावस्या भी आ गई, फिर भी अगर देखेंगे तो जरा सी कहीं लकीर होगी, जरा सारा गुण नहीं होता, लकीर जरूर रहती है, जिसको अमावस्या कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती है ना, दिखाते ना कृष्ण जाता था सबके घरों में, उनकी मटकी फोड़ता था, मक्खन खाता था, तो वो शिकायत करने आती थी यशोदा के पास, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में आके मक्खन खाया, मक्खन चोरी किया। तो माँ को तो गुस्सा आया, हाँ उसका कहा मुंह खोलो, तुमने मक्खन खाया है दिखाओ। तो मुंह क्या खोला, त्रिलोक दिखाई दिया उसके मुख से, तो वो तो हैरान हो गई। तो बाबा कहते हैं दिखाते कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती है, ये है साक्षात्कार की बात। मुंह खोला त्रिलोक दिखाई दिया, ये तो उस समय जैसे इसको साक्षात्कार हुआ। जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं, अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है, एकदम काला नहीं होती, काली नहीं होती आत्मा, थोड़ा सा बच जाता है, नहीं तो एकदम खत्म हो गया तो डेड खत्म, फिर आत्मा वो शक्ति वापस कहां से लाएगी। बाकी जाकर लकीर बचती है, सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर सबको वापस जाना पड़े, सबको सीढ़ी उतरनी है पूरी और फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, साकार के बाबा के समय तो बच्चे तो थोड़े थे, अभी तो बेहद हो गए। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी, पढ़ाई में बहुत बहुत नहीं पास होते हैं, पढ़ाई चल रही है ना अभी, हम सब तो नहीं पास होंगे, कुछ फेल भी हो जाते हैं, पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते हैं, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। हाँ बाबा आश्वासन देते हैं, कई हमारी बहनें थोड़ी निराश हो जाती है, हमारे सेंटर पर वृद्धि नहीं है, बाबा कहते हो जाएगी, आप योग करो, आह्वान करो, आत्मा ही अपनी आप आएगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं, समय नजदीक आता जाएगा फिर समझेंगे इनों में क्या है, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था ये कहा, अभी बाबा एक और आज समझाते हैं, अभी कहते हैं हम उस समय साकार बाबा के समय क्या कहते थे कि हमने समझा था ये कहाँ तक चलेंगे, क्योंकि जब यज्ञ में 14 साल रहे तो बाबा का धन यूज हुआ, या चलो थोड़े बहुत जो ले आए वो धन तो यूज हो गया, तो यूज हो गया तो फिर भारत में जब आए तो यहाँ तो बेगरी पाठ चला, कुछ एक ने वायदा किया था आप लोग भारत में आ जाओ हम मदद करेंगे, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया, तो भारत में तो आ गए और भारत में आए तो एकदम बेगरी पाठ चला। तो जो यज्ञ में समर्पित भी थे उन्होंने सोचा कि पता नहीं अभी ये यज्ञ कहाँ तक चलेगा, इनके पास धन तो है नहीं, ये कहाँ तक चलेगा, इसलिए कई भागंती हो गए। बाबा का लौकिक बेटा वो भी तो यज्ञ में ही था, तो कैसे उसने भी कहा बाबा यहाँ तो बेगरी पाठ चल रहा है, मैं जाऊँ थोड़ा धंधा करूँ पैसा कमाऊँ और मैं आकर के यज्ञ में दूंगा। और बाबा ने उसको कहा नहीं बच्चे बेटा बच्ची जरूरत नहीं है, वो सावल शास्त्र कुंडी भरने वाला सकारने वाला हाँ बाबा अपने आप करेगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो माना नहीं और गया और ओम शांति, यहाँ शादी की, बच्चे पैदा कर लिए, क्या क्या किया। तो लेकिन अंत में उसने बहुत पछताया जब उसने कहा सचमुच उसकी कहानी लास्ट की तो हम सुनते थे, हॉस्पिटल में एडमिट था, सब यज्ञ नहीं किया, सब कुछ यज्ञ नहीं किया। उसने कहा कि ये जीवन तो बेकार गया, जीवन का कोई वैल्यू नहीं, पर अगर वो बाबा का बना रहता तो कितनी उसकी वैल्यू होती। लेकिन वो क्यों नहीं बना, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल बाबा जैसा था, बिल्कुल, है ना, जिन्होंने देखा होगा, देखा था नारायण दादा को, हाँ किन्होंने देखा था, हाँ तो बिल्कुल नारायण दादा बाबा जैसा तो बेटा था। तो वो सब उनको इतना रिस्पेक्ट देते थे, बात मत पूछो, हाँ ये बाबा ब्रह्मा बाबा आ गया। तो उसको अंदर में आया कि मुझे गुप्त रहना है, मुझे ये दिखावा नहीं करना, नहीं तो मुझे ही ब्रह्मा बाबा समझ लेंगे, इसलिए वो और दूर होता गया। पर देखो अंत में तो उसने बहुत पछताया। खैर तो बाबा कहते ये भी ड्रामा है। तो उन्होंने कईयों ने समझ लिया कि अभी तो यज्ञ खत्म, क्योंकि इनके पास तो पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है। तो कितने भागंती हो गए उस समय, आज भी हम कई देशों में जाते हैं, वहां मिलते हैं और कहते हैं हमने तो ऐसे ही समझा था ये संस्था तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आप लोगों की संस्था तो कितनी आगे बढ़ गई है। तो देखो बाबा कहते उन्होंने ऐसे समझा, अभी कहते हमने समझा था ये कहां तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहां के रहेंगे, तो यहाँ इनके पास रहेंगे यहाँ भी खाने को तो है नहीं, तो चले जाओ दुनिया में, वहां तो फिर भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहां के रहेंगे, तो इसलिए भागे, इससे तो भागो, हाँ ऐसे समझा, भाग गए। फिर उनमें से आते रहते हैं, बहुत आए, फिर वापस भी आए कि अभी तो आपकी संस्था इतनी बड़ी हो गई, हमने तो समझा ही नहीं था। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं, इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इन्हों का भी उद्धार तो होना ही है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, कई आते हैं पढ़ी लिखी नहीं है, कई माताएं गांव-गांव की आती है बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। तो बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा, कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा। बहुत बाबा खुश होते थे जब ऐसी माताओं को देखते थे, कहते थे बाबा मैं मुरली पढ़ नहीं सकती। तो कई ऐसी थी माताएं प्रौढ़ शिक्षा में जाती थी, वो अक्षर ज्ञान सीखती थी, क्योंकि अक्षर ज्ञान तो स्कूल में जाएंगे तभी तो होंगे ना, खास मुरली तो पढ़ना जानती तो पढ़ लेती थी, बाकी कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं कुछ जास्ती पढ़ी नहीं हूं सिर्फ, तो बाबा कहते हैं हाँ बाबा कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, तो बाप कहते कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वो सब भूल जाओ। अर्जुन को भी कितना अभिमान था ना, कितना मैं शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ ये सब हूँ, तो भगवान ने उनको क्या कहा, सब भूल जाओ। तो वो कहती है मैं कुछ जास्ती पढ़ा, बाबा कहते हैं मैं कुछ जास्ती थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं भी तुमको बस अनफ दही तो पढ़ाता हूँ, जास्ती नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, उस छोटे बच्चे ने पहला शब्द बोला मम्मा बाबा, तो बाबा जैसे कहा बस वर्षे का हकदार बन गया, बाबा पिता को याद किया, पिता कहा बाबा का वर्षे का हकदार बन गया। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो, बाबा कहा हकदार बन गए, बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी हो गई। इसीलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, हाँ बाबा कहा राजधानी तुम्हारी, हकदार बन गए सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आप ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल वर्ग क्या क्या बहुत है ना, गरीबी बहुत है, उनका भी उद्धार होना है। और इसलिए क्या गायन है शास्त्रों में, भीलनी का पाठ, भीलनी का भी गायन है। कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए, अब बाबा ने क्या राज समझाया, राम ने भीलनी के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है, राम ने भीलनी के बेर नहीं खाए, शिव बाबा भी नहीं है, त्रेता वाले राम ने भीलनी के बेर नहीं खाए। हाँ वो तो राजा होगा, वो कहाँ भीलनी के बेर खाएगा, और शिव बाबा ने भी भीलनी के बेर नहीं खाए। क्यों? क्योंकि शिव बाबा तो अभोक्ता है, वो तो खाता ही नहीं है। तो वास्तव में राम ने भी नहीं खाया, शिव बाबा ने भी नहीं खाया, तो किसने खाया? हो सकता है इस ब्रह्मा ने खाया हो किसने खाया? ब्रह्मा ने खाया। हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भीलनी आदि आएंगी आएंगी, यहाँ कई ऐसे माताएं आती थी, गरीब गरीब गांव से माताएं आती थी, एक पोटली में चावल लेके आती थी, दाल ले आती थी, एक पोटली खाली बना करके ले आती थी, और बाबा को कहती है बाबा आप ये भोग बना देना, भोग बना देना। बाबा वो पोटली आंखों पर रखते थे, बाबा कहते थे ये पोटली तुमने दी है बाबा तुमको महल देगा, तो इसलिए सुदामा का मिसाल है। तो बाबा कहते हैं भीलनी आदि आएंगे, समझो टोली आदि ले आए, चलो कुछ भी लाए कि पिए, भोग बना देना। अभी भी लाते हैं, कई लाते हैं, इतना लाएंगे एक थैली भर के, हाँ बाबा इसका भोग बना देना। तो बाबा कहते हैं समझो टोली आदि ले आए, तो इनकार कैसे कर सकते हैं? भीलनी गणिकाएं ले आएंगे तो तुम भी खाएंगे, वो भोग के लिए ले आएंगे, उसे भोग बनता है तो सब खाएंगे ना, और ले कौन आए? गरीब। तो बाबा कहते हैं तुम भी खाएंगे, तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम्हारे पास आएंगे सभी। गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, गवर्नमेंट मदद करेगी इन गरीबों को उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी, बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं। भोला नाथ भीलियों से भी निकलेंगे, है ना, शेड्यूल कास्ट वो सब जो भी है वो भी आएंगे बाबा के ज्ञान में। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा, और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अभी कोई भी देवता नहीं रहा, सब हिंदू बन गए या और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। इतना बड़ा झाड़, सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ, तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे, एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है, शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए, तुम भी बलि चढ़ते हो, तन मन धन बाबा आपका, बाबा कहेंगे ट्रस्टियों के रहो, तो तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, भक्ति मार्ग में तो राजाई तो होती नहीं है, वापस कोई भी जा नहीं सकते हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। हाँ भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते, तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं, फिर नए सिर जन्म होता है, ये काशी करवट की बाबा बात कर रहे हैं, उनके हिसाब किताब चुप्तू होते हैं, सजा भोगते हैं। तो नहीं सिर जन्म होता, ऐसा नहीं कि वो कोई राजाई घर में जन्म लेंगे, नहीं सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यही है, आत्मा वापस तो जा नहीं सकती। नंबर वन तो तुम ही हो, किसमें नंबर वन, वापस जाने में भी तुम ही नंबर वन हो। अभी तक गए नहीं है तो कोई भी नहीं गया अभी तक, नंबर वन तो तुम ही हो। तुम ही 84 जन्म भोगते हो, सबको सत्व रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झार जर्जरी भूत हो गया है, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, रामायण में तो एक ही कुंभकर्ण दिखाया है ना, लेकिन सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। अनेक है, तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिनका पाठ है वो पुरुषार्थ करते हैं और वो ही मात पिता के दिल पर चढ़ते हैं। कौन चढ़ते हैं? जिनका पाठ है वही पुरुषार्थ करते हैं और वही मात पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती है, अभी क्या पूछती है बच्चियां बाबा से, बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। आजकल बच्चे भी बड़े चंचल हैं, तो फिर डांटना पड़ता है। तो देखो बाबा ने क्या जवाब दिया है, या किसी माता की शिकायत कि बच्चों को डांटना पड़ता है? हाँ, कोई नहीं, अभी सब है, डांटना तो पड़ता है। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है, बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ, अब थोड़े डांटना पड़ा, थोड़ी आंख दिखानी पड़ी, वो तो दिखाना ही पड़ता। लेकिन फिर बाबा क्या कहते, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, इतना मत डांटो जो उसको, इतना मारो जो बेचारा रोता ही रहे, दुखी होता रहे। आंख दिखाओ भले, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ, लेकिन प्यार तो है ना, तो ऐसा भी नहीं जो पाप कर्म बन जाए। तो बाबा कहते इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ, ये है मुख्य बात। जो पतित बनते हैं उसको विकारों को जीतो, बाकी थोड़ा आंख दिखानी पड़ती है, थोड़ा डांटना पड़ता है, बाबा कहते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, ऐसे नहीं कहा जाता है, क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं, पुरुष बहुत लड़ते हैं, मारते भी हैं अपनी स्त्री को। अब बाप ने तो माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम, नहीं तो माताओं को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है। तो देखो भक्ति मार्ग में जब विवाह होता है तो क्या कहता है जो पंडित होता है, वो कहेगा तुम्हारा अभी ये पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर तुमको चलना है, यही कहते हैं ना। हथियाला बांधा फिर फट से पति पतित बने, हथियाला बांधा और फट से पतित बने, वो क्या ईश्वर बना? ऐसा क्या ईश्वर पति, पंडित जी ने कहा कि ये तुम्हारा पति ईश्वर है, और ईश्वर क्या बना जो पहले दिन ही उनको विकारी बना दिया? ऐसा ईश्वर होता है क्या जो पहले दिन ही विकारी बना दे? वो ईश्वर कहाँ से हुआ? हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने, ये ईश्वर मिला उनको। अभी तो राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदी आत्मा, शिव बाबा का ये टेम्पररी रथ है, इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। ये यज्ञ बढ़ता ही जाएगा, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, बच्चे सफल करते रहते हैं बूंद बूंद, तो क्या जानते हैं कि ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है, इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना, बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती है। वो मनी ऑर्डर करती थी और जितना मनी ऑर्डर का पैसा लगता था उतना ही पैसा वो भेजती थी। अब पैसा भी उतना ही भेजा और मनी ऑर्डर का भी उतना ही खर्चा हुआ, इतना थोड़ा भी भेजती थी बाबा को। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती है, वाह बच्ची। बाप तो गरीब निवास है ना, ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलिया है, बाबा कहते हैं बांधेली हो तो भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। शिव बाबा का हाथ तो मिला ना, एक दिन आएगा जब सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहां, आएंगे जाएंगे कहां। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, मुक्ति जीवन मुक्ति लेने के लिए उनको यहाँ इस दुकान में आना ही होगा। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है, ये है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे, ये है सब वापस जाएंगे। किस रूप में जाएंगे, ये है साजन की बारात, बारात के रूप में वापस जाएंगे। कैसे बारात जाएगी ये भी साक्षात्कार होगा। बाबा मिसाल देते ना, मक्खियां कैसे जाती है, मधुमक्खियां या टिड्डी, टिड्डियों की भी बारात होती, कैसे एक साथ झुंड का झुंड चला जाता है, सूरज को भी ढक देते जब टिड्डियों का वो दल जाता है। बाबा कहते कैसे बारात जाएगी वो भी साक्षात्कार होगा। तुम्हारे पास और कोई देख न, तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके, ऐसा होगा। हाँ, अंत में बाबा कहते ये सब तुमको साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान, भोलेपन के साथ, बाबा भोला है लेकिन केवल भोला तो नहीं है ना, भोलेपन के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी भी है बाबा, तो भोलेनाथ भोलेपन के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शिव बाबा भोला भी है तो ऑल माइटी अथॉरिटी भी है, तो बच्चे भी तो ऐसे ही है ना, भोले बच्चे हैं लेकिन साथ साथ ऑल माइटी अथॉरिटी भी है, सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो भोलेपन के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है, ऐसा भी भोला नहीं बनना है ना, बुद्धू नहीं बनना है, तो कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, भोला रूप हाँ सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला भी नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको, समय आने पर सामना भी कर सको, ऐसा भोला नहीं बनो। मार खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ऐसा भोला भी नहीं बनो। सरलता के साथ समाने और सहन करने की भी शक्ति चाहिए, सामना करने की भी शक्ति चाहिए तो सहन करने और समाने की भी शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। स्लोगन, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा कब लहराया जाएगा? जब याद का झंडा अपने दिल में लहराओ। यह व्यक्ति शारीरिक ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो के अंतर्गत विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चलो सभी ठीक है, भट्टी वाले सब।